नमस्कार, मैं हरिशंकर व्यास, खुद को भारत माता का स्वयंसेवक कहने वाले, खुद को स्वयंभू राष्ट्रवादी बताने वाले अगर अचानक चीन को अपना दोस्त कहने लगे तो मामला गंभीर भी और गड़बड़ भी। आखिर ऐसा और इस तरह का हृदय परिवर्तन आत्मघाती ही कहा जा सकता है और ये हमारी कूटनीति का भी कबाड़ा कर देगा। इसलिए अपन तो कहेंगे कॉलम में इस बार मेरे विचार का शीर्षक है, चीन को दोस्त बताना मानना कहना देशद्रोह है। खास तौर पर वे हिंदू तो निश्चित ही जो अपने को भारत माता का स्वयंसेवक कहते हैं तथा जो राष्ट्रवादी होने का दम भरते हैं, पर हां, जो लोग सर्वभूमि गोपाल में पृथ्वी को मनुष्यों का खुला मैदान मानने का मानवतावादी नजरिया लिए हुए हैं या प्रगतिशीलता के नेहरूवादी माओवादी नक्सली आइडिया में हिंदी चीनी भाई भाई का राग अलापते हुए चीन को समानता सर्वहारा का मक्का समझते हैं, वे राष्ट्रद्रोह की कैटेगरी में नहीं रखे जाएंगे। इसलिए क्योंकि आखिर विचार और वैचारिक स्वतंत्रता में जीना मनुष्य होने का प्राथमिक लक्षण है। लेकिन जो स्वयंसेवक भारत माता के नाम पर रोहिंग्या या बांग्लादेशियों को समुद्र में फेंकने पर ताली बजाते हैं या 2400 घंटे हिंदू मुस्लिम राजनीति और पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए वोट की राजनीति करते हैं, वे यदि चीन को दोस्त करार दे रहे हैं तो यह राष्ट्र से मातृभूमि से वह गद्दारी है जिसकी मिसाल दुनिया में ढूंढे नहीं मिलेगी। कैसे, तब बताएं, दुनिया में दूसरा कौन सा ऐसा देश है जो 1947 की स्वतंत्रता से भारत की जमीन, भारत की आर्थिकी, भारत की गरिमा, भारत के मान सम्मान व महत्व को खाता हुआ है जैसे चीन ने खाया है। यह गहरी और गंभीर बात है, इसलिए क्योंकि हिंदुओं की मोटी बुद्धि में पाकिस्तान ही अकेला शैतान है। लेकिन पाकिस्तान की दुश्मनी विभाजन के घाव हिंदू मुस्लिम इतिहास की ग्रंथि से है। फिर पाकिस्तान भारत से लगातार हारा हुआ देश है। भारत ने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए हैं, जबकि माओ और कम्युनिस्ट पार्टी का जब से चीनी सभ्यता पर कब्जा है वह भारत को खाता और उसका अपमान करता हुआ है। उसने न केवल भारत की भूमि पर कब्जा किया है बल्कि वह डंके की चोट पर लगातार अरुणाचल प्रदेश पर कब्जे का मंसूबा बताता है। चीन ने तिब्बत को खाया, भारत का बफर खत्म किया, भारतीय सीमा में घुसकर 1962 में अक्साई चीन लद्दाख की कोई 38,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय भूमि कब्जे में की। इसे हम भारतीयों ने लगभग भुला दिया है। वहीं उसने 1963 से पाक अधिकृत कश्मीर की सक्सगम घाटी काराकोरम इलाके को भी पाकिस्तान से ले रखा है और पूरे अरुणाचल प्रदेश के लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर इलाके को अपना बताता है। यदि मान लें कि राष्ट्रवादी हिंदुओं की याददाश्त इतनी लंबी नहीं है, तब भी हालिया 7 से 10 मई 2025 यानी सिर्फ 4 महीने पहले का अनुभव तो याद रहना चाहिए। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में जो पाया उस पर चाहे जितना गौरव करे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी, उनके सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, विदेश मंत्री जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारत की सेना तथा हर हिंदू राष्ट्रवादी इस तथ्य सत्य को भला कैसे नजरअंदाज कर सकता है कि पाकिस्तानी सेना के पीछे तब चीन सक्रिय था। भारत का एक लड़ाकू विमान तबाह हुआ हो या 5 या 7 विमान, लेकिन सबके पीछे तो चीन के पाकिस्तान को दिए गए लड़ाकू विमान, मिसाइलें, एयर डिफेंस व सैटेलाइट आदि का सपोर्ट। मतलब चीन ने सैटेलाइट निगरानी से भारत की कार्रवाई की पल पल की लाइव खुफिया जानकारियां पाकिस्तान को दी थी। पिछले 78 वर्षों से चीन लगातार पाकिस्तान का सरपरस्त है। वह भारत के खिलाफ पाकिस्तानी आतंकियों की हरकतों का समर्थक है। 2009-2019 के बीच यूएन प्रतिबंध सूचीकरण की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सूची में आतंकवादी मसूद अजहर को यूएनएससी 1267 पर सूचीबद्ध करने के प्रस्तावों पर चीन ने बार बार तकनीकी बाधा डाली है। बहुत मुश्किल से वह मई 2019 में आतंकी करार हुआ। हम भारतीय भूल गए हैं, लेकिन पिछले 78 वर्षों में चीन ने भारत के कई अलगाववादी उग्रवादी जैसे नागा, मिजो, मणिपुर और उल्फा संगठनों को मदद दी है। 1967 से 1976 के बीच नागा अलगाववादियों को चीन ने म्यांमार के रास्ते यूनान के कैंपों में रखकर उन्हें सैन्य प्रशिक्षण दिया, चीनी हथियारों से लैस करके नागालैंड में अशांति हिंसा बनाए रखी। ऐसे ही 1960-1980 के दशक में मणिपुर की पीएलए को काचीन इंडिपेंडेंस आर्मी की मदद से म्यांमार में चीन ट्रेनिंग दिलाता रहा। 1980 से 2000 के दशकों में भी उल्फा के लड़ाकों को मदद करता रहा। यह भी याद रखना चाहिए कि 1962 की लड़ाई में चीन शेष भारत से उत्तर पूर्व को काटने की सीमा तक आगे बढ़ गया था। हाल के सालों में भी सिक्किम भूटान की सीमा क्षेत्र में जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हुए है और डोकलाम गतिरोध के समय उसकी जो रणनीति जाहिर हुई वह भविष्य में नॉर्थ ईस्ट का उसके रोडमैप का संकेत ही था। दरअसल माओ के समय से ही चीन ने भारत को उपहास का एवे ही देश माना हुआ है। माओ त्से तुंग ने 1973 में हेनरी किसिंजर से भारत का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि भारत एक गाय है जिसका शरीर बड़ा है पर ताकत कम है और जो अब भी बैलगाड़ी खींच रहा है। यह वाक्य चीनी कम्युनिस्ट शासन की उस मानसिकता का आईना था जो भारत को विशाल जनसंख्या और आकार के बावजूद कमजोर, धीमा और अप्रभावी बताता है। चीन की हमेशा रणनीति भारत को बराबरी का दर्जा नहीं देने की रही है। डेंग सियाओपिंग ने 1980 के दशक में राजीव गांधी से मुलाकात में यह कहा था कि भारत और चीन को नेतृत्व के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए, मतलब वह चीन की श्रेष्ठता को माने रहे। जियांग जेमिन और हु जिनताओ के दौर में चीनी थिंक टैंक भारत को लगातार दोयम दर्जे की द्वितीय शक्ति बताते रहे जिसमें न औद्योगिक सामर्थ्य और न रणनीतिक गहराई। शी जिनपिंग के समय में एक ही रणनीति है, भारत को अपना बाजार बनाते जाओ, भारत उस पर निर्भर हो, उसकी आत्मनिर्भरता खत्म हो, उसे दक्षिण एशिया के पड़ोसियों में इतना बेअसर बना दो कि विश्व राजनीति की जगह वह पाकिस्तान के ही रोने में फंसा रहे। दुनिया मान ले कि भारत का न दीन ईमान है, न कोई उसके साथ खड़ा हो और न वह चीन से आंखें मिलाकर उसे चुनौती देने की हैसियत लिए हुए हो। 2020 के गलवान की तनातनी ने और हाल के ऑपरेशन सिंदूर से उसने जान लिया है कि भारत में क्या दमखम है। चीन के लिए डोनाल्ड ट्रंप का भारत से पंगा वह अभूतपूर्व अवसर है जिससे वह अब दुनिया को दिखलाता हुआ है कि भारत अवसरवादी है। सोचे भारत कैसी कूटनीति करता हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी जापान जाकर दोस्ती की बात कर रहे हैं और वहां से चीन जाकर ड्रैगन हाथी की दोस्ती की बात कर रहे हैं, जबकि जापान राष्ट्र की दुश्मनी का एकमेव देश चीन है। सो कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है? जिस देश को इसका भी ख्याल नहीं है उसे तो दुनिया तो यही कहेगी कि वह अवसरवादी ही नहीं बल्कि आत्मघाती, अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारने वाला देश भी है। चीन का बाजार बनकर भारत ने अपनी आर्थिकी को बर्बाद किया है। फिलहाल चीन भारत से व्यापार में हर साल कोई 100 अरब डॉलर का मुनाफा कमा रहा है। व्यापार घाटा लगभग 100 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। भारत उपनिवेश काल की वैसी ही स्थिति में है जैसे ब्रिटेन भारत से कच्चा माल लेकर तैयार माल बनाकर बेचा करता था। हिसाब से ब्रितानी तो फिर भी भारत का कच्चा माल ले जाते थे, जबकि अब चीन को भारत कच्चा माल लगभग नहीं के बराबर देता है। भारत बुनियादी तौर पर उसके निर्मित सामान का खरीदार देश है, उस पर आश्रित देश है। हाल में रेयर अर्थ खनिज में भारत की चीन पर निर्भरता चौंकाने वाली थी। बहरहाल पते की बात कि सांप कभी दोस्त नहीं हो सकता। आग उगलता दैत्य समान ड्रैगन कभी हाथी का भारत की भीड़ का सहोदर नहीं हो सकता। जो ऐसा मानते हैं कि वह चीन दोस्त है, संकट का साथी है, वे भारत राष्ट्र राज्य को खाई में धकेल रहे हैं। पॉडकास्ट का ये एपिसोड अब यहीं खत्म होता है। अगले एपिसोड का करें इंतजार। बहुत बहुत धन्यवाद।